सभी को जय भीम,
जय भीम।
नमो बुद्धाय। आज सुबह में हमने नाम रूप देखा था और नाम रूप में पंच स्कंद और पंचस्कंद में हमने क्षणों को या पलों को भी गिन लिया था कि हमारे एक दिन के अंतराल में कितने पल होते हैं, कितने क्षण होते हैं। और ऐसा जब हम देखते हैं तो ये पुनर्जन्म की जो बात चल रही है तो उसको अगर हम वैसा लेते हैं तो हर एक क्षण में, हर एक पल में हमारा जीवन बदल रहा है। और वो पलों की या क्षणों की संख्या कितनी है? 6,40,99,908। ये गिनने को भी इतने कितने पल गए होंगे पता नहीं। तो यानी गिनते गिनते ही हम कितने बार बदल गए होंगे इसका हम अंदाजा कर सकते हैं। उसके बाद में हमने षडायतन देखा कि ये आयतन माने इंद्रिय, 6 इंद्रिय। और वास्तव में हमारा पूरा ये जीवन 6 इंद्रियों के द्वारा ही मानो चलता है। तो ये इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं और मन से भी इन सभी बातों को हम देखते हैं, सुनते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो 6 आयतन है या 6 इंद्रिय है, हमें धीरे धीरे तृष्णा की ओर लेके जा रहे हैं। क्योंकि इंद्रियों की आसक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम तृष्णा के बीच में अटकते जाएंगे। तृष्णा के बाद षडायतन के बाद हमने स्पर्श देखा था और ये स्पर्श भी ये 6 इंद्रियों के माध्यम से ही हम स्पर्श का भी अनुभव करते हैं। और स्पर्श की व्याख्या हमने देखी थी कि यह ऐसा क्षण है जहां वस्तु, इंद्रिय और इंद्रिय विज्ञान ये इकट्ठा आते हैं, एक साथ आते हैं और हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग प्रकार का स्पर्श हम अनुभव करते हैं। स्पर्श के बाद हमने वेदना देखी थी और वेदना 3 प्रकार की है और सुखद वेदना, दुखद वेदना और न सुख न दुख वाली वेदना। तो इसमें हमने ये देखा कि वेदना कैसे यानी स्पर्श और वेदना में ज्यादा फर्क नहीं है, वो साथ साथ में ही चलती है, ये भी हमने देखा। क्योंकि जब हमें एखादी वस्तु पसंद आती है या पसंद नहीं आती तो तुरंत हम उसका उपयोग करना चाहते हैं, उससे आनंद लेना चाहते हैं। हमने ये भी देखा था कि यहां स्पर्श यह ग्रहण करने वाला है और वेदना यह प्रतिसाद देने वाला है, ऐसी 2 बातें भी हमने देखी थी। वेदना के बाद हम तृष्णा की ओर बढ़े थे और तृष्णा में हमने 3 प्रकार की तृष्णा देखी थी, एक काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, और तृष्णा का जो पाली शब्द है तृष्णा के लिए वो है तन्हा। तन्हा यानी प्यास, जिसको पानी की प्यास लगती है उसको तन्हा कहते हैं या प्यास। तो यहां हमें हर एक चीज की प्यास लगती है, हर एक तृष्ण चीज के प्रति हम बढ़ते रहते हैं। वो प्यास यानी पानी हमें मिले, तृष्णा हमें मिले, पानी मिले और हमारी प्यास बुझ जाए, तो इस तरह से हम अगुवाई लेते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। और प्यास का सही मतलब है ये कि हम हमारी अवस्था ये अजागृत अवस्था में लेके जाते हैं। ये तना के माध्यम से हम अजागृत अवस्था अपनी बना लेते हैं और अजागृत अवस्था में हम समाधान ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। वास्तव में अवस्था अजागृति की है और उसमें समाधान हम कैसे ढूंढ सकेंगे, लेकिन हम समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी एक बात तृष्णा में हम देखते हैं कि हमें अपने अहंकार को भी बरकरार रखना, यह भी एक तृष्णा है। हमारा अहंकार कैसा आगे चले, हमारा अहंकार कैसा बढ़े, तो इसके लिए जो जो कुछ भी करना है वो हम करते हैं और उसमें भी तृष्णा का अंतर्भाव होता है। यह तृष्णा जो है कभी कोई चीज पाने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज से छुटकारा पाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। दोनों भी तरीके से हम इस तृष्णा का उपयोग करते हैं। एक तो आनंद लेते हैं या फिर आनंद नहीं चाहिए मुझे, तो हमें उससे कैसे हम छुटकारा पाएं, वो भी रास्ता हम इस तृष्णा के माध्यम से ढूंढ लेते हैं। यह तृष्णा आगे कहते हैं कि हमारा समाधान बढ़ाना है उसके लिए हमें उकसाती है, हमें उद्युक्त करती है। वास्तव में समाधान मिलने के लिए अगर तृष्णा हमें उद्युक्त करती है उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भंते जी हमने पहले देखा था कि भंते जी कहते हैं कि ध्यान में अगर आपके अलग अलग प्रकार के अनुभव मुझे आने चाहिए, इसकी भी हम तृष्णा करते हैं, इसकी भी हम हमारे अंदर तृष्णा बढ़ाते हैं कि अच्छा से अच्छा मेरा ध्यान हो। कभी कभी हम कहते हैं कि काम छंद से हम धम्म छंद की ओर बढ़े, तो ये भी एक प्रकार की तृष्णा है कि धम्म छंद हमारे अंदर अधिक से अधिक बढ़ता रहे। बंते संरक्षित ध्यान में तृष्णा कैसे हमें खींचती है इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं, ध्यान के प्रति हमारा लगाव कैसे बढ़ता है, हम ये सोचते हैं कि हम असमाधानी हैं, असंतुष्ट हैं और अभी हमें ध्यान के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त करनी है, संतुष्टि मिलानी है, इसलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। और जब ध्यान ठीक तरह से नहीं होने लगता है तो हमारा मन प्रतिक्रिया भी देने लगता है कि मैं ये प्रयास कर रहा हूं, ये करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन मुझे साथ नहीं दे रहा है, तो हमारे अंदर प्रतिक्रियाएं उभर आती है। और और जब प्रतिक्रियाएं उभर आती है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तृष्णा हमें अभी दुख की ओर लेके जा रही है। जब प्रतिक्रियात्मक मन होता है तो आदमी दुखी बन जाता है। तो वास्तव में हमें प्रतिक्रियात्मक मन से सृजक मन की ओर जाना है, और प्रतिक्रियात्मक मन से सृजक मन जब बनेगा तभी हमें ये जो अनुभव, ध्यान के अनुभव हमें प्राप्त करना है ऐसा हम सोचते हैं, वो अनुभव हमें मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं? जब प्रतिक्रियात्मक मन सृजक बनने लगता है या सृजनशील बनने लगता है। तृष्णा का यहां और एक अर्थ बताया है कि तृष्णा में हम हमेशा क्या कहते हैं कि यह मुझे चाहिए, यहां मैं आता है, मुझे चाहिए, तुझे नहीं चाहिए, ये मैं और तू की बात यहां आती है। जो कुछ चाहिए वो किसको चाहिए? मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। और कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं कि मुझको इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझको इससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी भी कभी कभी बात हमारे अंदर पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? क्योंकि हमें लगता है कि जो पाना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो फिर ठीक है, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। तो इस तरह की बात हम बाद में करने लगते हैं, पहले तो मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, इस तरह की बातें हमेशा होती है। यहां केवल इंद्रियों की आसक्ति ही नहीं होती, तृष्णा में केवल इंद्रियों की आसक्ति ही नहीं होती, तो मैं कुछ बनूं, मेरा जो मैं है उसको मैं अधिक मजबूत करूं, स्पष्ट करूं, अच्छा करूं, यह भी मेरी इच्छा होती है। इसको भी तृष्णा कहते हैं। किसको तृष्णा कहते हैं? कि ये जो मेरा मैं है उसको मैं मजबूत करूं, स्पष्ट करूं, अच्छा करूं, मेरा अच्छा नाम कमाऊं मैं। तो ये बातें जब चलती है तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें भी तृष्णा है। तो अभी अपने चर्चा के लिए ये सवाल हम ले सकते हैं कि ऐसा मैं कब कब सोचता हूं, ये मेरा मैं कब आता है? मैं नाम कमाऊं, अच्छा बनूं, मेरी अच्छी पोजीशन हो, वगैरह वगैरह जो हम ऐसा सोचते हैं, तो इसमें हमें लगता है क्या कि मेरी तृष्णा बढ़ रही है? हमें ऐसा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि इसमें क्या बुराई है कि मैं खुद को ऐसा बोल रहा हूं कि मैं अच्छा बनूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा हो जाऊं। लेकिन वास्तव में छुपे तौर पर ये तृष्णा ही है। तो हमें अपने अंदर की ऐसी छुपी हुई तृष्णाओं को देखना है। कभी कभी किसी को लगता है कि मैं यहां से अदृश्य हो जाऊं, कोई भी मुझे ना देखे, इस प्रकार की भी तृष्णा बंदे जी कहते हैं कि हमारे अंदर पैदा होती है। कोई जैसे और ऐसी बात जब बढ़ती है कि मुझको कोई ना देखे, मैं यहां से चला जाऊं, ये एक प्रकार की तृष्णा इसलिए बताई गई है कि यहां हमारी वेदना ज्यादा बढ़ती है, वेदना बहुत होती है, दुख बहुत होता है, और फिर लगता है कि यहां से मैं चला जाऊं। यदि हम जागृत नहीं हैं, तो अपनी तृष्णा कैसे वेदना पर आधारित है ये हम जानबूझकर भूल जाते हैं। अपनी तृष्णा वेदना पर कैसे आधारित है ये जानबूझकर हम भूल जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। वास्तव में ये षडायतन से शुरू हुआ है, छह आयतनों से ये तृष्णा धीरे धीरे बढ़ने लगी है और वेदना तक जब हम आए हैं और ये स्पर्श और वेदना यहां से फिर और आगे आगे बढ़ रही है वो, और उसके साथ साथ अपनी अपना जो दुख है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी यहां से अगर सही समाधान हमें या संतुष्टि हमें चाहिए और सच्चे संतुष्टि की ओर अगर हमें जाना है, तो कहते हैं कि ये खुफिया रास्ता यहां है। ये खुफिया रास्ता है कि जहां से हम बाहर निकल सकते हैं और उसको यानी जंक्शन भी कह सकते हैं हम। ये एक जंक्शन है, वेदना और तृष्णा एक जंक्शन है। वहां से गाड़ियां इधर से उधर बदल सकती है, इस पटरी से उस पटरी पर जा सकती है। तो अभी अब हमारी यहां से पटरी बदल सकती है यदि हमने सोचा जाना कि अभी ये पटरी ठीक नहीं है, वो ये दुख की ओर लेके जा रही है, तो हमें ये अभी जंक्शन है, यहां बहुत सारी पटरियां हैं, तो कोई भी पटरी से हम दूसरे वो पटरी से दूसरे पटरी पर जा सकते हैं। इसका मतलब हम भवचक्र से उठकर हम स्पाइरल पाथ में या ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहां ये खुफिया रास्ता है। इस खुफिया रास्ता जो है, ये सीक्रेट डोर जिसको कहेंगे हम, इसको हम कल देखने वाले हैं जरा ठीक तरह से कि हम कैसे वहां से निकल पड़ते हैं। तभी तृष्णा से हम उपादान की ओर आएंगे। उपादान का सही अर्थ है तेल, तेल फ्यूल पेट्रोल, और आसक्ति, ये दोनों भी बातें यहां समाविष्ट है। ये उपादान तृष्णा से उत्पन्न होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अभी तृष्णा को इतनी बार इतने अच्छी तरह से हमने देखा, अभी उपादान की और क्या जरूरत है। लेकिन उपादान तृष्णा से हमें और गहराई में लेके जा रहा है, और गहराई में या खाई में हमें ढकेल रहा है। इसलिए उपादान ये तृष्णा से भी डेंजरस है, ऐसा हम कह सकते हैं। उपादान के चार प्रकार बताए हैं। इन चार प्रकारों से हमें पता चलता है कि हम तृष्णा से भी और अधिक कैसे कैसे गहराई में जा रहे हैं या खाई में जा रहे हैं। पहला प्रकार है वस्तुओं का लगाव, वस्तुओं की आसक्ति, यानी भौतिक वस्तुओं की आसक्ति। और ये भौतिक वस्तुओं की आसक्ति हमें इंद्रिय सुख से मिलती है। इंद्रिय फिर आंख है, कान है, नाक है, वगैरह वगैरह। ये इंद्रिय सुख जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये भौतिक वस्तुओं का लगाव हमारा बढ़ते जाएगा। अभी दूसरा प्रकार है दृष्टि उपादान। ये दृष्टि उपादान ये जरा और ज्यादा भयंकर है, भयानक है। इस उपादान में हम सिर्फ अपना दृष्टिकोण ही पक्का नहीं करते, इसको सत्काय दृष्टि भी कहते हैं दूसरे अर्थ में। यहां अपना दृष्टिकोण ही हम पक्का नहीं करते तो अपने जो ओपिनियंस है, अपने मत है, अपने अनुमान है, अपना विश्वास है, ये सभी जो तात्विक और धार्मिक मत है ये सब इसमें आ जाते हैं। हमारा एक पक्का दृष्टिकोण बन जाता है कि ये मेरा मत है, ये मेरा मत पक्का है, मैं इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, चुनौती नहीं दे सकता। यहां ये दूसरे प्रकार का जो उपादान है उसमें हम अपने स्वयं के मत और धारणाएं जो कुछ अपनी बनी है उससे हम चिपक के रहते हैं, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन बुद्ध धर्म कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिससे आप चिपक के बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो मत है, उसका हमने आदर जरूर करना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। अपने भी मतों को और औरों के मतों को भी हमने रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब यहां दूसरों के मतों को हम टाल देते हैं और अपने मत उन पर थोप देने की कोशिश करते हैं, थोपते हैं। जब हम किसी के साथ बहस करते हैं, विवाद करते हैं, तब हम इस विवाद में दूसरों को चुनौती देते हैं, दूसरों का सुनते नहीं है। तो चुनौती जब देते हैं तो उससे फिर यह साबित होता है कि हम दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करते, हम अपना ही मत उस पर थोप देना चाहते हैं। और जब दूसरा आदमी उसके लिए तैयार नहीं होता तो फिर हम नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि अरे मेरा मत इतना अच्छा है, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, मैं इतने क्या बोलते हैं यो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट क्या बोलते हैं वो नाभि के नाभि से बोल रहा हूं, मराठी में जरा अच्छा बोलते हो, बी बीज देठा पासून बोलतो है, हिंदी में कैसा है मुझे नहीं मालूम। तो यहां हम ऐसा बोलते हैं, अरे यहां से बोल रहा हूं तो भी ये सुनता क्यों नहीं है, तो हमें लगता है कि दूसरों ने ही हमारी बातें सुननी है, तो ये भी इस ये बात से भी हम चिपकते रहते हैं। तो ये हमारे डिस्कशन के लिए दूसरा सवाल है कि हम अपने मतों से कैसे चिपक के रहते हैं, क्यों छोड़ने को तैयार नहीं। वास्तव में हमारा मत ये उतना ठीक नहीं रहता, उसमें डावाडोल की बात आती है, ऐसा है या वैसा है ये मुझे ही नहीं मालूम, लेकिन मैं जब बोलने की कोशिश करता हूं, रखने की कोशिश करता हूं, तो लोगों ने उसे स्वीकारना है, ये बात हम दूसरों पर थोपते हैं। तो यहां हमारे मतों से हम बिल्कुल आसक्त बने हुए हैं, हम उस अपने मतों को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए यह उपादान की जो कड़ी है वह इस तरह से हमें भवचक्र में बांधे रखती है, क्योंकि हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम फिर दोबारा एक बार एक चक्कर लगा देंगे, पूरे और 12 निदानों की चक्कर और एक बार लगा देंगे और फिर उपादान तक आएंगे, तो इस तरह से हम वहीं घूमते रहते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम अपनी बात को चिपक के बैठे हैं। और ये भवचक्र जब हम देखते हैं तो ये जन्म और मृत्यु का फेर है, ये और कोई बात नहीं है, यहां जन्म है मृत्यु है, जन्म है मृत्यु है, इस तरह से हम वो फेरे लेते बैठते हैं। यहां बंती जी कहते हैं कि बिना झिझक के आप त्रिशरण की शिक्षा स्वीकार करो, कर्म और पुनर्जन्म का स्वीकार करो, पंचस्कंद का स्वीकार करो, बुद्ध ने ध्यान के बारे में और निर्वाण के बारे में जो जो कुछ कहा है उसका भी स्वीकार करो, इन सब बातों का स्वीकार करो, और आपके लिए ये बिल्कुल अच्छी बातें हैं, ये जो बातें मैं अभी कह रहा हूं ये सब बातें अच्छी है, उसका स्वीकार हमें करना है, लेकिन उनसे चिपक के नहीं रहना है, उससे लगाव बनाए हुए नहीं रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कोई चुनौती देता है ऐसे इन बातों में तो आपने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह मुझे धमकी दे रहा है, हमें ऐसा ही लगता है हमेशा, जब कोई चैलेंज करता है तो क्या धमकी दे रहा है क्या मुझे, ऐसा बोलते हैं हम। फिर भी ऐसा बोलते हुए भी हम यही कहते हैं, यही हम कहना चाहते हैं कि मेरा कहना मान ले बाबा, धमकी व्यमकी मुझे देने की जरूरत नहीं है, बस मान ले मेरा बात, मेरी बात मान ले बस, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा कहकर हमारा गुस्सा भी बढ़ता है, क्योंकि वो आदमी अभी मानने को तैयार नहीं है, मानने को इसलिए तैयार नहीं कि तुम्हारी बातें गलत है, लेकिन हम उन गलत बातों का स्वीकार नहीं करते, यह भी उन बातों से चिपक के रहना है, उसको भी उपादान कहा है। उपादान का तीसरा प्रकार बंते जी कहते हैं, यह तीसरा प्रकार शील और व्रत इससे आधारित है। अभी शील का पालन करना, व्रत का पालन करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। हमने शीलाचार नहीं करना चाहिए, पंचशील का पालन नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं कहता। सब लोग कहते हैं कि इसका पालन होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी बात को चिपक के बैठते हैं कि मैं ही एक आदमी हूं जो शीलाचार का आचरण कर रहा हूं, दूसरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। तो यहां ये उपादान आ जाता है, यहां चिपकने वाली बात आती है कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं शील का पालन कर रहा हूं। तो यहां फिर बात कैसी आती है कि मैं शील का पालन कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर अभी गर्व बढ़ रहा है। लेकिन ये गर्व अगर आपका बढ़ता है तो इसका मतलब यही होता है कि आप शील का पालन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। शील का पालन जो करता है वो बोलता नहीं है कि मैं पाणाति पाता, ये बिल्कुल पक्के तरीके से मैं उसका आचरण कर रहा हूं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां ये आदमी बोलते रहता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। हम कहते हैं कि अभी समझो धर्मचारी है, धर्मचारी बोलते हैं अरे आप तो पंचशील का पालन कर रहे हैं, हम तो दस शील का पालन कर रहे हैं और पांच शील हम ज्यादा ले रहे हैं, ये ऐसा मत समझो। आप तो अभी आधे हैं, हम पूरे हैं। तो ऐसा अगर हम कहते हैं इसका मतलब हम दस शील का पालन कर रहे हैं या नहीं, वहां प्रश्नार्थ चिन्ह वहां पैदा होता है। ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं दस शील का पालन कर रहा हूं, क्या जरूरत है, मैं पंचशील का पालन कर रहा हूं बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन जो बोलता है इसका मतलब कुछ तो भी दाल में काला है, कुछ तो भी गड़बड़ है। क्योंकि जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो बड़े जोर से बोलता है, आवाज उसकी बड़ी ऊंची होती है तो लगता है यार यार सही बोल रहा है ये, लेकिन बोलता तो कुछ गलत बात बोलता है। बोलापन रेटून बोला मान सकते, खोटे बोला परंतु रेटून बोला। तो इसका मतलब है बोलो लेकिन जोर लगा के बोलो कि कोई चैलेंज ही नहीं कर सकेगी ये यानी झूठ बोल रहा है। तो ये हम लोग ये सब इसमें आ रहे हैं, हाँ ये जरा ध्यान में रखना है, नहीं तो ये किसी और लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है क्योंकि हम शील का पालन करने का दावा कर रहे हैं, पंचशील की पालन करने का, दसशील पालन करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये दावा सही में सच है क्या, क्या इसमें कुछ झूठ है, ये हमें ही देखना है। तो इन बातों को अगर हम लेते हैं तो हमारा झुकाव कहीं एक तरफ जा रहा है, ऐसा हमने सोचना चाहिए। क्योंकि वन साइडेड पर्सन जिसको कहेंगे हम, इस तरह से हमारा बर्ताव होता है। और इसमें होता क्या है फिर कि जो दोस्त अपने बने हुए रहते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये बात सुनता ही नहीं है, अपनी बात लगाता है। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या हो जाता है, कटौती होती रहती है और आखिर में फिर अकेला रह जाता है, मैं हूं शील का पालन करने वाला, बस यह झंडा अपना ही लिया है और अपना ही घूम रहा है वो झंडा लेके। एकला चलो रे, ये जो बुद्ध ने कहा है कि कोई नहीं आ रहा तो ये मैं अकेला चलूं, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है वो। एकला चलो रे, कोई सुनता ही नहीं मेरा, तो फिर अभी ये अकेला चलू नहीं तो कौन चलेगा मेरे साथ में, इस तरह की बात आई है। और उपादान का चौथा प्रकार भंती जी ने बताया है कि न बदलने वाला अपना जो स्व है, अपना जो सेल्फ है, उसको पकड़कर बैठना, या आत्मा है उसको पकड़कर बैठना है, पक्का दृष्टिकोण रखना है स्व के बारे में। यहां हम देखते हैं कि हरेक धर्म में आत्मा को पकड़ के बैठे हैं, क्रिश्चियन लोग सोल को पकड़ के बैठे हैं, मुस्लिम लोग रूह को पकड़ के बैठे हैं। ये पक्का, ये पूरा विश्वास, पक्की धारणा ये जब होती है तो यहां ये उपादान, चौथे उपादान का बंते जी ने इसके लिए उदाहरण दिया है। यहां हम ये भी कहते हैं कि पंच स्कंद बदलता नहीं है, ये भी एक मेरा स्व है, ये भी एक अहंकार है कि मैं नहीं बदलूंगा। पंच स्कंद माने मैं, तो मैं बदलने वाला नहीं हूं, मेरा पंच स्कंद बदलने वाला नहीं है, इस तरह से हम सोचते हैं। लोभ, द्वेष और मोह, ये तीन जो जहर है, तो इसको अग्नि कहा है। लोभ, द्वेष, मोह को अग्नि कहा है, और ये उपादान है, ये अग्नि में तेल डालते रहता है, ये उपादान है, यानी अपनी आसक्ति है, ये उसमें बार बार तेल डालते रहती है, और ये लोभ, द्वेष, मोह का अग्नि भड़कते रहता है, वो बंद होने का नाम नहीं लेता। अभी अगले कड़ी की ओर हम बढ़ेंगे, और वह है भव। भव यह उपादान से उत्पन्न होता है, उपादान से निर्माण होता है। भव का मतलब है बिकमिंग या जीवन या अस्तित्व। और यह उपादान पर आधारित है। और यह भव की अवस्था, भव चक्र में जो छह लोक है, वो छह लोक में भी हम कहीं भी जीवन अने जन्म ले सकते हैं, कहीं भी वहां निर्माण हो सकते हैं, इस तरह से बताया। छह लोगों के बारे में, उसमें देवलोक है, कौन से लोक है, और असुर लोक है, प्रेत लोक है, नरक लोक है, प्राणी लोक है, और मनुष्य लोक है या मानव लोक है। तो यह भव कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। वास्तव में भव का अर्थ है गर्भधारणा, बिकमिंग जिसको कहा है। तो जो सभी निदान हैं, जो 12 निदान बताए गए हैं, उन सब की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है, फिर आगे अभी वहां तक काम है, वापस आना है पूरे। फिर एक बार भव पैदा हो गया तो फिर जन्म है, जरा मरण है, फिर अविद्या है, वगैरह वगैरह, फिर हम इस चक्कर में घूमते हैं। कुछ बौद्ध संप्रदाय जो है उनके अनुसार, यानी तिब्बती परंपरा जो है, उस तिब्बती परंपरा में मृत्यु और पुनर्जन्म इसके बीच की जो अवस्था है उसको बार्डो कहते हैं। यानी ये भव की स्थिति अभी निर्माण होने वाला है उसके बीच वाली, अभी गर्भधारणा हुई है लेकिन जन्म अभी हुआ नहीं है, उसके बीच की जो स्थिति है उसको बार्डो कहा है। ये तिब्बती लोग ऐसे ही, उनकी धारणा है। कोई कोई लोग कहते हैं कि भव और आगे का, आगे की जो कड़ी है जाति, इसके बीच का जो अंतर है उसको ये कहते हैं, भव कहते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो ये भव यहां से मेरा मैं शुरू हो जाता है, यहां से मेरा स्व शुरू हो जाता है, और वो स्व जब तक ये मृत्यु नहीं आएगा और दूसरा पुनर्जन्म नहीं होगा तब तक ये चालू रहता है। इसके साथ साथ ये यहां स्व की अपने शुरुआत तो होती है, उसके साथ साथ अपना दृष्टिकोण जो बनता है, मुझे सुख चाहिए मुझे दुख नहीं चाहिए, ये जो दृष्टिकोण हमारा बनता है उसकी भी शुरुआत यहां से ही होती है। अपने जीने का जो तरीका है उसकी भी शुरुआत यहां से होती है। इसलिए उस अर्थ से अगर हम देखते हैं तो भव ये निदान बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की कड़ी है जाति यानी जन्म, बर्थ। जन्म यह भव पर आधारित है। और कुछ लोग यहां ये कहते हैं कि हम अभी तक माता पर निर्भर थे, हम अभी तक माता पर निर्भर थे लेकिन अब हम माता से स्वतंत्र हो गए हैं। और माता से बच्चा कब स्वतंत्र होता है, जब उसकी, यानी बच्चा पैदा होने के बाद उसकी नार काट दी जाती है तभी वो माता से स्वतंत्र हो जाता है। जब तक वो नार है तब तक वो माता से संबंधित है, माता से कनेक्टेड है, माता ही उसको खान पान वगैरह सब सब कुछ माता ही देती है, लेकिन ये नार तोड़ने के बाद वो पूरी तरह से स्वतंत्र बन जाता है। और ये स्वतंत्र होने के बाद कोई एक लोक में इसका फिर जन्म हो जाता है, कोई एक लोक में, ये छह लोक में से किसी एक लोक में उसका जन्म हो जाता है। अभी जन्म को हम और अलग तरह से भी ले सकते हैं। जब शादी हो जाती है तो अपना नया जन्म होता है, होता है ना? नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। अभी वो जीवन कैसा है वो बाद में ही पता चलता है लेकिन नए जीवन की शुरुआत वहां से हो जाती है। यह हमारे युवा भाई है, उन्होंने जरा संभल के रहना है यहां हम ये भी कह सकते हैं कि नए जीवन का पड़ाव यहां से शुरू हो जाता है। जब हम धम्म शिविर में जाते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है। ये जन्म की बात है, यहाँ पहले का अलग था, अभी जन्म यहाँ शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जाने के बाद वो उसकी नार बहुत सारे लोगों से टूट जाती है। लेकिन आखिर में ये हमें ये यहाँ ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी निर्माण हुआ है या निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, लेकिन उसका मरण भी होने वाला है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ जानना है। ये अगर नहीं जानते तो फिर बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि जो निर्माण हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मृत्यु भी होने वाला है। और अंतिम निदान है, कुछ लोगों के चल रहा है, थोड़ा सा झूम रहे हैं, जो झूम रहे हैं उन्होंने जरा जागना है, अभी हो गए। झूम बराबर झूम। मैं ऐसा अगर नहीं बोलता तो झूमने वाले झूमते ही रहते, अभी जरा जाग गए वो। क्योंकि ये समय ही ऐसा है, ये समय झूमने का ही है। इसलिए ध्यान रखा है झूमने के लिए। बस झूमते जाओ, एक घंटा दिया है। अभी पता नहीं कल क्या होगा। तो अंतिम निदान है जरा मरण, डीके एंड डेथ। डीके, DECAY, अभी ये जो कड़ी है ये जन्म पर आधारित है। और जरा मरण की ये जब कड़ी में हम पहुंचते हैं तब इसमें हमें दुखी दुख नजर आता है या उसका हम अनुभव करते हैं। इसमें खिन्नता, इसमें पीड़ा, इसमें निराशा, इसमें शोक, उदासीनता, क्या क्या देखा हमने, खिन्नता है, पीड़ा है, उदासीनता है, निराशा है, शोक है, दौर्मनस्य है, ये सब बातों को यहां हम अनुभव करते हैं। जन्म तो हुआ लेकिन अब बहुत उसका फल जो है वो भुगतना पड़ रहा है। जन्म का ये फल है, परिणाम है कि हमें ये बातें अभी भुगतना पड़ रही है। एक बार अगर जन्म हो गया तो जरा मरण को कोई भी रोक नहीं सकता, यानी वहां तक आपको जाना ही है। एक बार जन्म हो गया तो जरा मरण को हम रोक नहीं सकते। अभी हमारा जन्म क्यों हुआ है ये अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो चीजों से हमारा लगाव था, चीजों से हमारा लगाव था, आसक्ति थी, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। और ये संस्कारित अवस्था है। इस संस्कारित अवस्था में, संस्कृत अवस्था में या कंडीशनड अवस्था में ऐसा ही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। अभी जरा का मतलब क्या है? जरा का मतलब है दांत सड़ जाना, दांत गिर जाना, बाल सफेद होना, ये सब जरा की बातें हैं। हम सिर्फ बोलते हैं बुढ़ापन, बुढ़ापन नहीं है, ये सब दुख की बातें अभी शुरू हो गई है। और ये दुख ऐसा है, इसको प्रतिछन्न दुख कहते हैं, प्रतिछन्न दुख। प्रतिछन्न दुख में क्या होता है कि हम बता नहीं सकते, लेकिन सिर्फ अनुभव करते हैं उस दुख का। जैसे दांत दुखना किसी को बता सकते हैं क्या? खाली खुद को ही सह लेना है, बस हाथ लगाने आए और कुछ नहीं करना है। क्या हो गया इतना ही बोल सकते हैं कि दांत दुख रहा है, लेकिन किधर दुख रहा है, क्या हो रहा है, वो मुझे ही पता है, दूसरों को पता नहीं चलता। कान दुख रहा है, कान किधर दुख रहा है बोले तो कैसा बोलूं मैं, कान तो दुख रहा है, कान में दर्द हो रहा है, तो ये प्रतिछन्न दुख है। लेकिन ये कब आएगा? ये जरा में सब कुछ हम अनुभव करते हैं। बालों का सफेद होना ये भी जरा है। आजकल गोदरेज ने बहुत बहुत लोगों का फायदा किया है। गोदरेज डाय ऐसा कोई दिखता ही नहीं, 80 साल का हुआ तो भी बाल सफेद दिखते ही नहीं। अभी यहां बुद्ध बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए, इसका मतलब आप जरा में हैं। अभी उसके सफेद ही नहीं हुए तो गाल जरा में कर। उसके दांत गिर गए हैं लेकिन बाल काले हैं। अभी वो कोई कोई नहीं लगाता। झुर्रियां ये भी एक बूढ़ेपन का या जरा का उदाहरण है कि सब झुर्रियां आ जाती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, रिंकल्स जिसको कहते हैं। इंद्रियों का कमजोर होना ये भी जरा की ही बात है। इंद्रिय कान है, नाक है, आंख है वगैरह वगैरह, ये कमजोर हो जाते हैं। किसी को आंख से दिखाई नहीं देता, किसको कान से सुनाई नहीं देता, हाँ वगैरह वगैरह, तो ये इंद्रिय पूरे कमजोर हो जाते हैं। ये जरा का मतलब हो गया। और मरण का अर्थ यह है कि शरीर को त्याग देना, शरीर का मृत्यु होना। इतना ही नहीं तो जो कुछ मालूम है आपको उसको छोड़ देना, इसको भी मृत्यु कहा है। जो कुछ आपको मालूम है उसको भी छोड़ देना है। और मृत्यु का और एक उदाहरण दिया है कि जीवन के दौरान अनुभवों का ओझल होना और नष्ट होना, यह भी मरण है, यह भी मृत्यु है। अनुभवों का ओझल होना और अनुभव नष्ट हो जाना, इसको भी मरण कहा है, मृत्यु कहा है। इस प्रकार से ये पूरे 12 निदानों को अगर हम देखते हैं तो जैसे शुरू के दिन बुद्ध ने जो कहा था कि एक दुख का गोला है, यह पूरा दुख का गोला है, और इस दुख के गोले को हम अनुभव कर रहे हैं। 12 निदानों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये पूरा दुख ही दुख है जहां जहां तहां, और उसका हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध ने एक खुशी का मार्ग भी हमें बताया है कि यहां से दुख से हम सुख की ओर जा सकते हैं। ये एक आशा का किरण जो है वो बुद्ध ने हमें बताया है कि हम दुख में ही पड़े रहने वाले हैं ऐसा नहीं है। अगर आप जानते हैं, आपको लगता है कि इससे दूर होना है, तो जरूर आप इससे अलग हो सकते हैं, सुख की ओर भी आप जा सकते हैं और दुख का आप अंत कर सकते हैं। तो इस तरह से 12 निदानों को हमने समाप्त कर दिया है और अभी कुछ मिनटों के लिए ब्रेक होगा और हम गुट में फिर एक बार दोबारा जाएंगे और चर्चा करेंगे। तो एक सवाल दिया है ना, मैंने दो दिए ना, मेरा ख्याल उतने काफ़ी है। बाकी की बातें भी आप आपके चर्चा सत्र में ले सकते हैं, जो कुछ हो गया है तो उसमें से कोई भी आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बंद करे सुमाइक में।